Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Sambhav Steel Tubes Limited Q2 FY26 earnings conference call hosted by Go India Advisors. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then zero on your touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Ms. Sana Kapoor from Go India Advisors for her opening remarks. Thank you, and over to you, ma'am.
Thank you, Shruti. Good evening, everyone, and welcome to Sambhav Steel Tubes Limited earnings call to discuss Q2 and H1 FY26 performance. The financial results and investor presentation have been uploaded on the exchanges. Hope you have had the opportunity to review the same. We have on the call Mr. Vikas Kumar Goyal, MD and CEO, Ms. Anu Garg, CFO, Mr. Bikash Agarwal, Chief Strategy Officer, and Mr. Mayank Agarwal, AVP CEO's Office and Investor Relations. We must remind you that the discussion on today's call may include certain forward-looking statements and must be therefore viewed in conjunction with the risks that the company faces. May I now request Mr. Vikas Kumar Goyal to take us through the company's business outlook and financial highlights, subsequent to which we will open the floor for Q&A. Thank you, and over to you, sir.
Thank you, Sana. Good evening, everyone, and thank you for joining us for Sambhav Q2 and H1 26 earnings call. I hope you have had the opportunity to go through our financial disclosures available on the exchanges. I will walk you through the key strategic updates, operational progress, and financial performance, followed by Q&A session. I am pleased to share that Sambhav has delivered its strongest-ever half-yearly performance, with total sales volume, revenue, EBITDA, and PAT growing by 51%, 76%, 94%, and 109%, respectively, reflecting robust operational and financial progress. Before discussing the performance details, I would like to highlight some key strategic updates. On the production capacity expansion front, we are establishing greenfield projects at Kesa and brownfield projects at Kutehr. Over the next four or five years, a fully integrated facility with a total finished product capacity of 1.2 million tons per annum will be developed in phases, with phase one targeted to be commissioned by Q4 2027. Key approvals are already in place, such as the recommendation to grant environment clearance by Expert Appraisal Committee has been received on 24th October 2025. Land acquisition is completed, and the HR coil mill has been procured, creating a pathway for rapid project execution. In phase one, we are planning for 360,000 tons per annum of stainless steel coils, with backward integration for which around 810 crores will be invested. Around 125 crores will be invested for additional 25 megawatt power plant for cost efficiency. Both will be funded through a mix of debt and internal accruals. I am happy to share that Sambhav has received product approvals from 11 government departments in the last 6 months, including BMC, MHADA, CIDCO, MP Jal Nigam, Delhi CPWD, and BHEL, among others. These approvals reflect growing trust in our quality standards and further strengthen our market presence. Coming to the operational performance of H1 26, the management is delivering on its commitment by successfully moving towards high-margin, value-added products such as CRFH pipes, stainless steel CR coils, galvanized coils, and pipes. Sambhav delivered record volume with value-added production reaching 2.5 lakh tons per annum and value-added sales volume at 1.7 lakh tons per annum, higher by 59%. Capacity utilization in the pre-galvanized division and stainless steel division has improved to 89% and 86% respectively. EBITDA per ton stood at around 7,000 per ton including sponge iron sale and around 7,500 ton excluding sponge iron sale. Moving to financial performance of H1 26 on year-on-year basis, I would like to highlight that Sambhav recorded its higher ever revenue, EBITDA and PAT. Revenue rose to 1139 crores, marking a growth of 76% driven by higher production and sales volume. EBITDA increased by 94% to 133 crores and EBITDA margin stood at 11.7%. PAT increased by 109% to 63 crores and PAT margin stood at 5.6%. Throwing some light on quarter two results, revenue, EBITDA and PAT increased to 580 crores, 60 crores and 30 crores, up by 83%, 168% and 446% year-on-year respectively. EBITDA and PAT margins stood at more than 10 and 5% respectively. I would also want to highlight that the financial cost dropped significantly by 46% on quarter-on-quarter basis, owing the progress towards repayment of long-term borrowing. In conclusion, Sambhav stands firmly on the path of sustainable and value-driven growth, driven by strategic capacity expansion, deeper market penetration, and robust distributor network, ensuring wider range of product availability. With strong emphasis on value-added products, process efficiency, and brand building, we continue to enhance our strength and operational excellence, supported by our strategically located integrated plant, captive power system, growing OEM, and dealer-distributor relationship. We are well equipped to capture the rising demands in India, rapidly expanding steel pipes and tube market. Backed by sound financials, visionary leadership, and the trust of stakeholders, Sambhav is steadily advancing towards becoming a leading force in the industry. As we always say, Sambhav hai, to sab Sambhav hai. That's all from me. I would now request to open the floor for Q&A. Thank you.
Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Hardik Gandhi from HPMG Shares and Securities Limited. Please proceed.
Hello, sir. Am I audible?
Yes.
Yeah. So, congratulations on a good set of numbers. Two questions from my side. Sir, given that we had a quarter-on-quarter increase in the sale volume as well as the value-added products, why were our EBITDA margins lower by approximately 2.5%?
Hello? Are you audible?
Yes, sir.
क्वार्टर टू जो है वो रेनी सीजन है तो इस कारण उसमें जो हमको रॉ मटेरियल हमारा यूज होता है जो कि आयरन और कोल है उसकी माइंस की प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है और दूसरा उसमें मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है तो 2 से 3% का मॉइस्चर कंटेंट आता है तो हमारी जो तो उसकी रिकवरी है मार्जिन कम हो जाते हैं उस कारण EBITDA कम रहा बाकी हमने हर बाकी जैसे आपने कहा कि हमारी सेल्स इम्प्रूव हुई है हमारा वैल्यूएटेड प्रोडक्ट इम्प्रूव हुआ है
Understood. So going forward, would you say a 13% EBITDA margin is a sustainable number going forward for the next quarters or even the upcoming years?
Vikash Agrawal this side. We believe 13% is the range upon which we will be operating in terms of EBITDA margin for coming quarter.
Understood. And another question for the CAPEX side. How will that be funded? Because I saw that we recently reduced our debt with the IPO funds. But considering we are doing approx 1,000 crore capex in the next year, so wanted to know the company's angle on the funding side of it.
To be precise, capex estimated to be around 935 crore rupees. We believe we require a debt of around 600 crore rupees. Balance will be done through internal accruals. Out of the internal accrual also, and out of 935, we have already spent 200 crore rupees as on 30th September. So rest cost to be incurred, balance cost incurred is 735. for which we will be taking a mix of debt and internal accrual. So debt will be at max 600 crore rupees.
Understood, sir. And just the last bit, a question from mine. On the revenue potential from the new CapEx, how would you portray that in a set turnover number that would also work?
You see, our first phase of the current CapEx which we are planning is completely stainless steel. So 360,000 ton of stainless steel production capacity will be installed in the first phase. Production will be roughly around 65%, so roughly it will be around 240,000 to 245,000 ton of stainless steel coil. So we believe the revenue potential out of this will be around 2400 to 2800 crore rupees depending on the market price on that point of time.
Understood. Thank you so much, sir. I'll join back in the queue for the additional questions.
Thank you, Ardik.
Thank you. The next question is from the line of... Before we take the next question, we would like to remind participants that you may press star and one to ask a question. The next question is from the line of Abhinav Shetty. Please proceed.
Hello, am I audible, sir?
Yes, yes.
Yes, sir. Congratulations on a good set of numbers. Sir, I wanted to know if there is any difference between the guidance given for the CAPEX plans in the first earnings call and the update which was released on Saturday. And also my second question is the EBITDA guidance you had given in the first earnings call of 8,000 tons for the financial year 26. So right now, for the first half of the financial year, the EBITDA per ton is 6,950. So do you reiterate the earlier guidance or are there any revisions to it?
CapEx guidance, actually the last earning call में भी हमने कहा था कि हमारा total जो हमने workout कर रहे हैं हम लोग इस call में बताएंगे. तो हमें बहुत खुशी है कि हम पूरा सब हमारा final कर चुके हैं, final order हमारे हो चुके हैं, जो हमारे जो long lasting जो हमारे delivery items हैं. और हमने हमारा जो हम पहले MS और SX का mix करने वाले थे, अभी टोटली हमने उसको 360,000 टन को एसएस में कन्वर्ट किया है कि हम पहले फेस में सिर्फ एसएस स्टेनलेस स्टील कॉइल्स का ही प्रोडक्शन करेंगे विद फुली इंटीग्रेशन. तो ये कॉस्ट जो है उसी लिए हमारी अभी ये कॉस्ट है जो हमने आपको बताई 935. आउट ऑफ 935 जो है उसमें 810 ही हमारी प्रोसेस कॉस्ट है जो कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लगेगी, और 125 जो है वो पावर प्लांट एग्जीक्यूशन है जो हमारा कॉस्ट एफिशिएंसी को हमारी इम्प्रूव करेगा, हमारे बेटा को बूस्टअप करेगा. दूसरा क्वेश्चन था आपका कि हमारा जो EBITDA मार्जिन जो है सर. सेकंड क्वेश्चन क्या था अपना?
अभिनव जी, कैन यू रिपीट द सेकंड क्वेश्चन प्लीज?
यस सर, दैट EBITDA मार्जिन EBITDA पर टन गाइडेंस यू हैड गिवन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 8000 पर टन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26. The complete financial year. Right now, as of the first half, the EBITDA per ton is 6,950. So, are we still going to meet that earlier EBITDA per ton guidance for the entire financial year, or are there any changes to it?
So, if you see, our quoted is approximately, just 10 to 15% down from what from forward-looking statement we have given earlier. But if you see, from last quarter to the second quarter, the price of MS coil itself has been corrected by 3 to 4 rupees. So we believe our margin going forward will be in the range of 6 to 8,000. Currently 7,000 is a maintainable EBITDA margin on a yearly basis. That's what we believe.
All right, sir.
Thank you. Before we take the next question, we would like to remind participants that you may press star and one to ask a question. The next question is from the line of Rakesh. Sorry, the next question is from the line of Devesh from Ikigai Asset Managers. Please proceed.
Hi sir. Thanks for the opportunity and congrats on the good set. Sir, just one question. What was the thought process behind, because earlier we were talking about this 180 plus 180 kind of a setup on the greenfield project. So just wanted to understand the thought process. Are we seeing more competition on the ERW side, which is why we are converting it, or is it more to do with the margin profile on the SS side that we are doing?
Thank you, Devesh. Actually, stainless steel में आप देखेंगे तो बहुत speed से demand grow हो रही है इंडिया में, और इंडिया ने जो भी एक किया है कि वो import पे उन्होंने BIS standards जो लागू किए हैं, उससे इनको imports भी कहीं ना कहीं कम हुआ है. तो हमारे पास डिमांड बहुत ज्यादा है, और आज मार्केट इंडिया में इतना प्रोडक्शन नहीं है तो, और मार्जिन्स भी हमारे पास इसमें अच्छे हैं, और हम अगर एक ही प्रोडक्ट को हाई वॉल्यूम पे बनाते हैं तो हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बेटर होती है. इसलिए हमने सोचा कि हम फर्स्ट फेज में स्टेनलेस स्टील करते हैं, फिर सेकेंड फेज में जब तक जो सेकेंड फेज में फिर हम स्टेनलेस स्टील बढ़ाना है या MS को मिक्स करके बढ़ाना है या MSC करना है, वो फिर सेकेंड फेज में हम तय करेंगे.
Got it, sir. And just a follow-up on that. So, current margins, if you could just guide us, what kind of margins we are seeing on the SS side currently?
ये लगभग हमारा अगर जब हम पूरा फुल यूटिलाइजेशन पे आ जाएंगे तो फिर 15 से 16 हजार होने वाला है, और जब हमारा यूटिलाइजेशन कम होगा तो ये 12 से 13 थाउजेंड के आसपास रहेगा. जैसे हमने पहले भी देखा कि हमारा जब प्रोडक्शन चालू किया हमने फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में लगभग धीरे धीरे बढ़ा, और आज हम 15 थाउजेंड के आसपास बहुत आराम से कर पा रहे हैं.
Got it, sir.
Thank you.
Thank you. The next question is from the line of Rakesh from Star Fund. Please proceed.
Good evening. Thank you for giving me this opportunity. First of all, congratulations for the great set of numbers. I just had a couple of questions. As HR coil price have been dropped to 45-46, and our Patra price is approx 38 to 39, and this gap is expected to narrow down due to incremental capacity. So how the company is looking, what are their strategies to protect their market share and their margins in the near term and long term?
जो HR coils and पत्रे का जो आप gap बता रहे हैं, ये 5 से 6 रुपए, 5 से 66,000 रुपीस का gap है. लगभग यही gap अगर yearly basis पे रहता है, और इससे अगर गैप बढ़ता है तो HR कॉइल की पाइप की सेल भी कम होती है और पतरे की सेल बढ़ जाती है. तो हमको जो प्राइस आज मिल रहा है वो HR कॉइल हम प्रोडक्शन कर रहे हैं सेकेंडरी रूट से, हमारी जो कॉस्टिंग है वो आज पतरा पाइप के बराबर की है, लेकिन हमको जो प्राइस मिलता है इसीलिए हमारे मार्जिन भी अच्छे हैं. तो HR कॉइल के पाइप के हम इक्विवेलेंट ही माल मार्केट में बेच पा रहे हैं, तो हमको लगता है कि ये जो दोनों का डिफरेंस है ये रिजनेबल है, और ये इतना ही रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है.
ओके सर, जैसे नए प्लेयर्स आ रहे हैं मार्केट में, A1 माधव, एंड अपन जो है बेसिकली सेंट्रल बेस्ड हैं, तो इस केस में अपन क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं कि अपना मार्केट शेयर इंटैक्ट रहे, क्योंकि अपने को फ्रेट डिसएडवांटेज का पॉइंट. हाँ
जी जी जी, जैसे इसमें मैंने पहले भी बताया कि जो हमारे जैसे प्लेयर और भी मार्केट में आएंगे तो ये तो मतलब खुद की HR कॉइल बना के पाइप बनाने वाली मार्केट बड़ी होगी. अगर आप डाउन द लाइन देखेंगे कि 3-4 साल में लगभग 25-30% ये वाली क्वांटिटी होगी, जिसमें हम भी हमारी कैपेसिटीज बढ़ाएंगे और दूसरे भी प्लांट आएंगे. तो जो दिक्कत है वो मतलब अगर महंगा HR कॉइल होगा तो दिक्कत है, नहीं तो फिर हम सब साथ में काम करेंगे. और डिमांड बहुत स्पीड से ग्रो हो रही है, आप देखेंगे कि पाइप्स में 9% की एवरेज से जो है डिमांड ग्रो हो रही है, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और वो डिमांड से जब सब सेटल होगा वो.
सर ये जो अपना स्टेनलेस स्टील का प्रोडक्ट है, ये बेसिकली हम इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज कर रहे हैं या इसको अपन आगे जाके फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कुछ प्लान कर रहे हैं? आई मीन इसके कस्टमर वगैरह अपन किस रेंज में देख रहे हैं, B2B देख रहे हैं या B2C में अपन सोच रहे हैं इसको?
अभी जो हमारा प्रोडक्ट है वो दो जगह यूज हो रहा है, स्टेनलेस स्टील पाइप मैन्युफैक्चरिंग में और यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चरिंग में. हम 2020, 2020, 2024 में अभी तक हम कंसेंट्रेट कर रहे थे, नाउ हमने 304, 316 बनाना शुरू किया है. तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी है जो कि आपका फूड ग्रेड में भी यूज हो रहा है, तो ये लगभग हमारा B2B ही है. और फर्दर हो सकता है हम इसमें आगे कुछ विचार है हमारा कि B2C कंज्यूमर प्रोडक्ट भी बनाएंगे, लेकिन अभी हमारा जो है ये हम B2B कर रहे हैं इसको.
ओके सर, ये Q2 नंबर अपने को नेट रियलाइजेशन और EBITDA मार्जिन के साथ मिल जाता तो हमें एक प्रोजेक्शन बनाने में आसानी रहती. आप मेरे को Q2 का प्रोजेक्शन बता सकते हैं सर?
net realization.
Yes, net realization and EBITDA margin.
So, अगर आप देखेंगे तो हम लोगों का प्रोडक्ट चार अलग अलग प्रोडक्ट है तो कंपोजिट नेट रियलाइजेशन तो बताया जा सकता है बाय डिवाइडिंग द वॉल्यूम पर ईच कैटेगरी का नेट रियलाइजेशन वुड बी विल टेक टाइम सो इफ यू जस्ट वी रिक्वेस्ट यू टू ड्रॉप अ ईमेल सो दैट वी कैन गिव यू द प्रिसाइज डिटेल व्हाट एवर यू आर रिक्वायर्ड फॉर EBITDA margin फॉर Q2 itself इज 10.4%.
Product wise,
we have so our accounting system doesn't allow us to give you product wise bifurcation of neither sales neither EBITDA, but just drop us a mail. We will have our 100% effort to provide you the detail.
Understood, sir. And sir, last thing, अपन आगे जाके बिग फोर ऑडिटर को अपॉइंट करने का सोच रहे हैं क्या? क्योंकि अपने जो अकाउंट्स है उसमें क्रेडिबिलिटी ज्यादा बढ़ती है अगर हम बिग फोर ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, तो ऐसा कोई प्लान है अपना आगे जाके?
Your point taken. Definitely, we will consider that, and we will hopeful. We believe SS Kothari itself is big.
Itself is an under 10
and India's top known auditor. Since you are talking about Big Four, once our profitability increases, we'll definitely deploy that kind of auditor who cost us a little bit more.
Okay. Got it, sir. Thank you.
A renowned name in the financial world and in the financial circle, and their credibility itself speaks for themselves.
Thank you, sir. I'll just join in the queue. Thank you for giving me the opportunity.
Thank you, Rajesh.
Thank you. The next question is from the line of Yathar Saxena from Sunrise Fund. Please proceed.
Yeah, so thanks for giving me the opportunity and congrats on this set of numbers. So I have a couple of questions to ask. First, like as Rajesh already mentioned, so my question is like as HRC prices in the range of 45-46 and Patra is in the range of 38-39, and in the coming few quarters, next few quarters, if HRC prices will go down, like with the new capacity coming in, and billet prices will shoot up. So how will you, like, how, what is your strategy behind this narrowing line down of gap between the HRC and Patra? And don't you feel the pressure with HRC as this market is very strong with good quality product?
Actually, dekhiye, Delhi ki market mein गवर्नमेंट का जो अभी नया विजन है कि इंडिया विल बी द नेक्स्ट एक्सपोर्टर ऑफ अप्रोक्स 50 मिलियन टन पर ईयर, तो उसके लिए लगभग हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी जितनी बढ़ती जाएगी उतनी हमारे प्राइजेस स्टील प्राइजेस पे करेक्शन होता जाएगा, जो आप देख रहे हो कि लगातार एचआर कॉइल जो कि सबसे बड़ा कंपाउंड है स्टील मैन्युफैक्चरिंग का, तो इसके प्राइजेस पे करेक्शन आ रहा है, साथ के साथ में रॉ मटेरियल के प्राइस पे भी करेक्शन आ रहा है। जैसे आप देखेंगे कि 11 मंथ पहले जो है गवर्नमेंट ने कोल पे जो सेस होता था 400 रुपीज पर टन का वो रिमूव किया है, कोल की माइंस लगातार ऑप्शन हो रही है, फोर्थ ट्रंच अभी ऑप्शन हो रहा है जिसमें 18 माइंस नई ऑप्शन हो रही है, और जो पुरानी माइंस ऑप्शन हुई थी उनकी कोल्स अभी अवेलेबल हुए हैं, तो कोल कॉस्ट लगभग अभी बॉटम आउट हुई है कि जो बेसिक प्राइस है उसी पे ही बिना प्रीमियम के कोल हमको अवेलेबल हो रहा है। दूसरा मैं कहूँ आयरन ओर के, उसमें आयरन ओर की माइंस भी लगातार ऑक्शन हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार प्राइवेट ऑक्शन हुआ जिसमें एमएनएस ने और रुंगटा ने माइंस यहाँ पे बाइक की है और बहुत बड़ी क्वांटिटी की माइंस है, तो आयरन ओर के प्रोडक्शन भी बढ़ रहे हैं एनएम, और साथ के साथ में जो पैलेटाइजेशन की फैसिलिटी है वो भी हमारे एरिया में, जो गढ़चिरौली में 4.5 मिलियन टन का नया प्रोडक्शन अभी आ जाएगा मार्च तक, रायपुर में नया 3 मिलियन टन का प्रोडक्शन अभी पिछले कुछ 1 मिलियन टन का चालू हुआ है और 2 मिलियन टन का इस मंथ में चालू हो जाएगा, तो इससे रॉ मटेरियल की हमको जब बेनिफिट मिलेगा तो फिनिश प्राइस के फिनिश में हमारा वो मार्जिन बढ़ेंगे, ना कि हमारे मार्जिन कम होंगे, तो जैसे जैसे फिनिश में करेक्शन आएगा वैसे रॉ मटेरियल में भी हमारा करेक्शन आना शुरू हो गया है।
But sir, like in the longer run, like because of the good quality, like in that longer run, it's a good quality product of HRC, don't you feel the pressure, like when the Patra and HRC are available at the same prices, so won't the customer will switch to HRC compared to Patra when both the prices are available at the same price? So in the longer run, don't you feel the pressure?
Sir, we are the HR coil manufacturer. So this is a very good opportunity we have. The people were convert to the HR coil manufacturer, HR coil pipes.
Okay. And my second question is like I want to understand more on the stainless steel application, like in which our realization is 125 rupees. So are you planning for any power integration, or it's just an industrial product, like volume is less? And what is the focus on this value-added products? Like in the margins are more, so what is our focus like in the next couple of quarters or 2 years for sake, in the near term or the longer term, specifically for this SS or value-added products?
Yes, yes, we have a much planning of the finished product also. But now it's now clear in my hand. We are in on the R&D process of the finished product of stainless steel. But we are now focused in the multiple grades. Like we are now manufacturing 3 and 304 grade successfully from last month, from September month onwards. And 316, 316L, thermos ke jo steel N grade aata hai, SN grade. Wo bhi hum abhi banane ka hamara is quarter ka target hai. तो हम जब ये सारी ग्रेड्स पहले हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जैसे पाइप की मैन्युफैक्चरिंग आप बोलिए बिगर डाया पाइप की बोलिए या जो भी वो आरएनडी हमारी चल रही है कि स्टेनलेस स्टील में और हम क्या प्रोडक्ट हम बना सकते हैं जब बेसिक हमारे पास है जब हम उसकी पूरी इंटीग्रेशन के साथ में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं वैल्यू एडेड हमारे लिए बहुत छोटा सा हमारा एक वैल्यू एडेशन ही करना हमारा काम है वो बहुत आराम से किया जा सकता है तो हम उसी लाइन पे हैं कि हम पहले हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करें देन हम वैल्यू एडेड की तरफ में मूव करें
Okay. And my last question is on the margins. So like one of my friend asked me this, that the margin in SS on full utilization will be 15,000-16,000. So coming to this GP or structural, so in ERW or GP, what would be our margins like if running at full utilization, like structural and GP?
जैसे अगर आप पाइप की अगर बात करेंगे तो हमें जो है 6,000-7,000 रुपीस का पर टन का हमारा उसमें इबिटा होता है और जीपी में एडिशनल हमको 1,500 रुपीस और हमें मिलते हैं और स्टेनलेस स्टील की बात करेंगे तो 14,000-15,000 रुपीस हमारा स्टेनलेस स्टील में इबिटा होता है
ओके एंड दिस इज ऑल एट फुल यूटिलाइजेशन
हाँ अभी हमारा फुल यूटिलाइजेशन पे है अगर आप हमारा पाइप देखेंगे या इसकी हमारी गैल्वेनाइजिंग की कैपेसिटी और इंक्रीज हो रही है अभी हम 85% पे पहुंचे हैं तो हमारा टारगेट है कि हम नेक्स्ट क्वार्टर में जब आपके साथ बैठे तो हम 95% पे हों और स्टेनलेस स्टील भी हमने तकरीबन 85% के आसपास अचीव कर लिया है तो उस पर भी हम एक 10% के हमारे पास में चांस है कि हम उसमें और यूटिलाइजेशन उसका बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी थोड़ी सी इस क्वार्टर में और इम्प्रूव होने की हमारा पूरा प्रयास है
ओके सर ओके थैंक यू सर एंड ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर्स थैंक यू
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ आदित्य अग्रवाल फ्रॉम शगुन कैपिटल प्लीज प्रोसीड Hello, Mr. Aditya. Your line has been unmuted. You may go ahead with your question. As there is no response from the current participant, the next question is from the line of Kishan from Pola Venture LLP. Please proceed.
Yeah, good evening. मुझे एक चीज जानना था कि जो हम ये stainless steel के product बना रहे हैं तो हमारे और कौन है कॉम्पिटिटर्स इसके रिलेटेड जैसे जनरल स्टेनलेस जो है वो तो अलग ही कैटेगरी में है राइट और हम जो स्टेनलेस स्टील बना रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी को यूज होता है एंड हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है इसमें
हम जो जेएसएल का मेन प्रोडक्शन लाइन है हम उसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं सेम लाइक है जेएसएल जेएसएल कोई हमारी उससे लाइन अलग नहीं कोई हमारा प्रोडक्ट उससे अलग नहीं है जिससे वो मतलब फुल इंटीग्रेशन जितना वो कर रहे हैं उतना हम भी कर रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट उनका भी कॉइल सेल है हमारा भी कॉइल सेल है हाँ वो डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे 200 सीरीज से लेके वो 700 सीरीज तक का माल बनाते हैं कुछ एक्सपोर्ट सीरीज भी बनाते हैं तो हम भी उसी लाइन में है कि हमने 202-204 पे हमने फुल कमांड कर लिया लगातार 6-8 महीने से हम बेच रहे हैं 304 हम बेच रहे हैं तो 316 जो सीरीज मतलब ग्रेड जो है वो एक टास्क है कि हमको उसको कम्प्लीट करना है और इसमें कोई फर्क नहीं है कि वो उनकी प्रोडक्ट के कोई क्वालिटी में हमारी क्वालिटी में कोई डिफरेंस होता है दूसरा तीसरा जो मेन इसमें बनाने वाला है रिमझिम करके हैं यूपी में उनका एक हमारे साइज का प्रोडक्शन है जो हम करने वाले हैं उतना उनका प्रोडक्शन आज है तीन ही प्लेयर मेजरली इस मार्केट में अभी काम कर रहे हैं फ्लैट प्रोडक्ट्स में
ओके अच्छा, इसके रिलेटेड मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे अभी आप, मैंने पास्ट पार्टिसिपेंट को सुना तो उन्होंने पूछा आपसे और आपने बताया भी कि नॉर्मल जो स्टील के पाइप्स वगैरह आप बनाते हैं उसमें 6 से 7 हजार टन एबिटडा बनता है अपना पर टन, और स्टेनलेस स्टील में 15,000 रुपीज पर टन के आसपास बनता है फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे। तो अभी मेरा ऐसा मुझे ये जानना है, फिर हमें क्यों हमें वो दूसरी वाली कैटेगरी की जरूरत क्या है? हमें तो इन फ्यूचर फोकस ही सिर्फ और सिर्फ स्टेनलेस स्टील पे ही करना चाहिए, क्योंकि स्टेनलेस स्टील पे हमारे पास मार्जिन ज्यादा है, हमारा रिटर्न ऑफ इक्विटी ज्यादा बनेगा उसमें।
ऑफ कोर्स, तो इसीलिए सर हमारा जो अभी फर्स्ट एक्सपांशन आ रहा है वो हमारा स्टेनलेस स्टील पे ही आ रहा है, कि हम जो 3,60,000 टन का जो एक्सपांशन कर रहे हैं पूरा स्टेनलेस स्टील पे ही कर रहे हैं। दूसरा, लेकिन अगर आप देखेंगे कि परसेंट ऑफ इबिटा दोनों में सेम है, इसका हमारा प्रोडक्ट रियलाइजेशन 50,000 रुपीज पर टन है, उसमें अगर मैं 6,000 रुपीज करता हूँ तो इट इज अराउंड 12-13%, और वो मेरा स्टेनलेस स्टील का प्रोडक्ट का जो रियलाइजेशन है वो 1,30,000 रुपीज पर टन है। तो अगर मैं उसको देखता हूँ कि एज पर रियलाइजेशन वो भी 12-13% ही मुझे मिलता है, जैसे परसेंटेज वाइज
सेम ही है। ओके ओके ओके, आई थॉट परसेंटेज वाइज डिफरेंस है, इसके लिए मैंने बोला कि फिर हमें वो दूसरा प्रोडक्ट बनाना ही क्यों।
आई पर टन पे डिफरेंस है, लेकिन स्टेनलेस स्टील पर टन मतलब टनेज पे कठिन काम है, एमएस आसान काम है।
ओके
सर, रिसोर्स वाइज भी अगर आप बहुत ज्यादा स्टेनलेस स्टील को एक्सपांशन करेंगे तो रिसोर्स जैसे हो गया आपका स्क्रैप सोर्सिंग करना वो भी डिफिकल्ट होगा, तो ग्रेजुअल इंक्रीज ही किया जा सकता है प्रोडक्शन को स्टेनलेस स्टील, बट फॉर द एमएस रिसोर्स, बैकवर्ड रिसोर्स बहुत जल्दी सोर्सिंग हो सकता है, उसको भी स्केल इसके लिए बहुत जल्दी किया जा सकता है। बट इकोनॉमिक्स वाइज देखेंगे तो थोड़ा सा कैपेक्स एसेस में ज्यादा लगता है, बट हाँ मार्जिन अच्छा है इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी टर्म, नॉट इज अ परसेंटेज। सेकेंडली, उसका वैल्यू चेन प्रॉपर मास्टर होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट एंड प्लेसमेंट ऑफ दैट क्वांटिटी इज ऑल्सो चैलेंज। इट कैनॉट बी जस्ट मैन्युफैक्चरिंग करके आप मार्केट में उतरेंगे, तो मार्केट को वो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए भी एक टाइम लगता है, और जैसे कि आपने बोला देर इज अ बिगर प्लेयर हुआ सिटिंग इन द मार्केट करेंटली, तो यू कैनॉट जस्ट इन कैपेसिटी ऑफ दैट काइंड एंड जस्ट चैलेंज एनीबडी एल्स।
आई गॉट इट व्हाट आप क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं समझ गया। अच्छा, मेरा एक और सवाल है इसमें, मेरा ये जान, मुझे ये भी जानना है क्या हमारे पास कोई आयरन ओर की माइंस है, कि हमारे पास कोई आयरन, और इन फ्यूचर हम देख रहे हैं आयरन ओर माइंस के रिलेटेड कुछ हम खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे बैकवर्ड इंटीग्रेशन में काम आ सकता है?
नहीं सर, अभी तो हमारे पास में कोई ना आयरन ओर माइंस है ना कोल की माइंस है, और अभी हमारा कोई प्लान भी नहीं है, क्योंकि जो अभी आज गवर्नमेंट के जो समझो प्रयास है कि ये आयरन ओर को बहुत बेस रेट पे ले आएंगे, मतलब जस्ट कोल आज आप देखेंगे तो जस्ट डिगिंग कॉस्ट पे कोल अवेलेबल है, आज पे 1200 रुपीज पर टन के कॉस्ट में कोल अवेलेबल है। अगर मैं कोल माइंस ले उतने रेट में मैं कोयला खोद के ऊपर नहीं ला पाऊंगा, मतलब माइंस करके।
ओके,
तो वैसे वही हालत भी आप देखेंगे आयरन ओर की अगले 5 सालों में आपको देखने की मिलेगी, क्योंकि हमारे पास में आयरन ओर का अच्छा भंडार है।
छत्तीसगढ़ में तो भरपूर है, कोई ऐसा इशू भी नहीं है आपको आयरन ओर के, डीपीआई इज देयर ओनली।
प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने की बात है, अब एनएमडीसी का देखेंगे कमिटमेंट जो है वो 35 मिलियन टन अभी कर रहा है, और 2030 की उनकी कैपेसिटी वो बढ़ा लेंगे वो, तो प्रोडक्शन से आयरन ओर बढ़ेगा तो माइंस की हमको जरूरत नहीं है। और माइंस गवर्नमेंट अब जिस तरीके से माइंस का ऑक्शन भी कर रही है आईबीएम प्राइजेस पे, तो वो आज वर्केबल भी नहीं है, देखेंगे जेएसडब्ल्यू को माइंस सेक्टर में लॉस है, तो कहीं ना कहीं वर्केबल भी हमको लगता नहीं गोइंग फॉरवर्ड है।
ओके ओके, थैंक यू।
थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ आदित्य अग्रवाल फ्रॉम सगुन कैपिटल, प्लीज प्रोसीड। हेलो मिस्टर आदित्य, मिस्टर आदित्य योर लाइन हैज बीन अनम्यूटेड, यू मे प्रोसीड विद योर क्वेश्चन। As there is no response from the current participant, we will move on to the next participant. The next question is from the line of Miraj from CJ Shah. Please proceed.
Thank you for the opportunity and congratulations on a great set of numbers, sir. My question is regarding the capex. Jis sabse capex bataya gaya hai in the presentation, कि हम लोग को 3,60,000 टन का स्टेनलेस स्टील का कैपेसिटी डालना है एंड यू हैव गिवन द कॉस्ट ऑफ 810 करोड़, बट इन दी अदर डॉक्यूमेंट सर उसमें बताया गया है कि करेंटली वी आर एडिंग 1,20,000 टन एडिशनल ओनली एट 180 करोड़. तो कैन यू जस्ट, ये थोड़ा कंफ्यूजन आप क्लियर अप कर सकते हो सर? एंड उसमें नीचे अलग से केपेक्स दिया है 755 करोड़ का.
जी, बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं सर. ये 3,60,000 टन जो है ये अप टू स्टेनलेस स्टील HRAP क्वाइल्स है, जिसमें हम इसमें फुली इंटीग्रेशन से SS स्टेनलेस स्टील HRAP क्वाइल्स करेंगे, जिसमें हम कोल्ड रोलिंग जो है CRAP करेंगे 1,20,000 टन और 2,40,000 टन हम HRAP ही सेल करेंगे.
ओके ओके, सो HRAP इज ओनली. ओके, अंडरस्टूड. एंड दैट इज एक्सक्लूडिंग जो.
जी
सॉरी, प्लीज वर्ड सर, प्लीज वर्ड.
हमारा जो वैल्यू एडेड है वो स्टेनलेस, वो CR क्वाइल्स है 1,20,000 टन और जो हमारा HR क्वाइल, HR स्टेनलेस स्टील है वो है 2,40,000 टन. 3,60,000 बनेगा लेकिन 120 CR होगा.
अंडरस्टूड. ओके, बट सर करंट लाइन जो है उसमें तो पूरा CR बनता है ना, जो करंट एग्जिस्टिंग लाइन है.
जी जी,
तो व्हाई हैव वी डिसाइडेड कि पूरा लाइन CR नहीं करना है अभी?
हाँ जी, अभी हमारे पास में जो विड्थ है वो 330 मिलीमीटर की विड्थ की हमारे पास में अभी कैपेसिटी है. जो नेक्स्ट हमारा एक्सपेंशन आ रहा है उसमें हम 650 mm की विड्थ तक का माल बना पाएंगे, जो कि हमारे HR के कंज्यूमर हमसे होल्ड ऑन कर पाएंगे लेके. तो आज की हमारी HRAP की हमारे पास सेलेबल की विड्थ भी नहीं है और हमको CR की मार्केट सेट करनी थी पहले. तो CR पे करने पे हमारा कैपेक्स भी बहुत आता है, तो हमको एक फर्स्ट 1,20,000 का हम इंक्रीज कर रहे हैं. अभी हम लगभग 60,000 टन कर रहे हैं उसको 120 बढ़ा रहे हैं और HR जो है वो हमारा CR के लिए रॉ मटेरियल होगा, तो वो हम इस तरीके मिक्स करके अभी सेल कर रहे हैं. जैसे जैसे हमारी CR की क्वांटिटी हम अचीव कर लेंगे और फॉरवर्ड उसको CR की क्वांटिटी हम और बढ़ा लेंगे.
ओके, तो अभी हम लोग खाली HR करके आगे पास ऑन कर देंगे और आगे जो हमसे प्रोक्योर करता है वो CR कर देगा उसके ऊपर, कोल्ड रोल कर देंगे उसके ऊपर.
मार्केट में बेचा जाएगा और पार्टली जो है इंटरनली हम लोग CRAP करके मार्केट में उतारेंगे फिनिश प्रोडक्ट. दैट्स व्हाट द.
अंडरस्टूड अंडरस्टूड सर. एंड ये सर, ये पूरा 3,60,000 एक साथ ही आएगा या ये इट विल कम इन पार्ट्स, बिट्स एंड पीसेस?
ये सर एक साथ ही आएगा, ये तो
पूरा एक साथ आएगा. ओके, एंड इसमें सर कुछ डिफरेंशिएशन होता है कि 200 सीरीज के लिए इतना कैपेसिटी है, 300 सीरीज के लिए इतना कैपेसिटी है?
कैपेसिटी जो है वो सबके लिए एक लगती है, उसके लिए रॉ मटेरियल अलग अलग होता है.
ओके, ओनली इनपुट विल बी डिफरेंट. ओके, एंड सर जो हम लोग ने प्रेजेंटेशन में मेंशन किया है कि वी हैव सक्सेसफुली स्टार्टेड टू मैन्युफैक्चर 304 सीरीज ऑल्सो, तो उसमें सर हम लोग कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं फिलहाल और उसका क्या वॉल्यूम हमने अभी तक किया है, इवन इफ इट इज अ टेस्ट बैच, अगर टेस्ट बैच या फिर फुल स्केल की प्रोडक्शन शुरू हो गया हो?
अभी हमने 304 का 1,100 टन अभी तक किया है अक्टूबर 31 तक का, और इसका जो यूजेस है वो आप बोल सकते हो कि 304 इज मोर देन इंडस्ट्रियल यूज. पाइप मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है पर इंडस्ट्रियल यूज ज्यादा है.
निकिल
कंटेंट ज्यादा है इसमें, इसका रियलाइजेशन भी ज्यादा है. जैसे आज अगर 304 का प्राइस देखेंगे तो आज 1,85,000 रुपीज पर टन है.
Wow.
और 202 का जो रियलाइजेशन है वो 1,25,000 टन पर टन है.
अंडरस्टूड. सो फिलहाल हम लोग ने सर 100 टन का किया है मैन्युफैक्चरिंग. 1100 सॉरी, 1 last question before I get back in the queue, sir, ये quarter में क्या आप brief एक EBITDA का ये background जैसे थे कि SS में EBITDA per ton कितना था, GP में कितना था?
सर ये approximately दे सकते हैं क्योंकि हमारे सिस्टम से अलग अलग वो उसका वर्केबल नहीं हो पाता क्योंकि वो सब एक
approximately yes. And approximately fine sir, yes, approximately fine.
₹15,000
for SS and GP में है
और ₹6,000 उसमें pipes में है और ₹7,000 galvanized product में है.
ओके सो हम लोग ने बेसिकली एसएस में जो हमारा एम था वी अचीव दैट की 15,000 रुपीज हमें करना था वी फाइनली अचीव दैट
यस 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 डेफिनेटली
परफेक्ट ग्रेट दैट इज ग्रेट न्यूज सर कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर आई विल जस्ट गेट बैक इन विद यू
थैंक यू
थैंक यू Ladies and gentlemen, in order to ensure that the management is able to address questions from all participants in the conference, please limit your question to two per participant. The next question is from the line of Alisha Mahavla from Trust Mutual Fund. Please proceed.
Hello sir, good evening. So, please clarify karna tha, aapne jo abhi kaha ki aap is quarter Q2 mein ERW mein humne 6,000 ka EBITDA per ton kiya hai.
अप्रोक्सीमेटली मैं बता सकता हूँ आपको क्योंकि हमारे पास में अलग अलग नहीं हो पाता जैसे मैंने जो टोटल क्वांटम किया और टोटल इबिटा किया ये हमारा फिक्स है कि हमने ये किया है अगर ये अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हैं कि जो मैं इसमें अगर बाइफरकेशन करूँ कि मुझे एमएस में कितना हुआ होगा या स्टेनलेस स्टील में कितना हुआ होगा तो ये जो हम वर्किंग करते हैं उससे अलग अलग हो सकता है
नहीं क्योंकि अगर टोटल रिपोर्टेड एबिटा अगर 6,100 है एंड ईआरडब्ल्यू में 6 कर रहे हैं एंड वैल्यू एडेड का शेयर इज गॉन अप देन द ब्लेंडेड नंबर शुड हैव बीन हायर इसलिए आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ईआरडब्ल्यू में 6,000 हुआ है
सो देयर इज अ करेक्शन इनटू दैट अलीशा सो 6,000 जो है दैट इज फ्रॉम आवर इन हाउस कॉइल सो बेसिकली पाइप्स में भी देयर आर टू सेगमेंट्स जहां पे हम कुछ बाहर की एचआर कॉइल लेके भी पाइप में कन्वर्ट करते हैं सो वहां पे मार्जिन इज लेस अगर मैं उन दोनों का भी ब्लेंडेड कर दूं देन इट विल बी अराउंड 5,000 रुपीज
Understood. And so second question था कि ERW में अपना volume growth दो quarter से काफी single digit में है so is this capacity constraint क्योंकि some other players are managing to do double digit so वहां पे growth में कोई challenge आ रहा है क्या
नहीं so if you look at our galvanized division number so जो GP coil का production है that has increased quarter on quarter सो बेसिकली जो हमारी इन हाउस कॉइल है दैट वी आर डाइवर्टिंग फॉर वैल्यू एडिशन टू गैल्वेनाइजिंग कॉइल्स एंड पाइप्स एंड दैट इज द रीजन क्योंकि उस पे मार्जिन भी थोड़े ज्यादा है गैल्वेनाइज प्रोडक्ट्स पे सो आर फोकस इसकी अगर वहां पे डिमांड है सो वी शुड डाइवर्ट आवर प्रोडक्शन इनटू दैट
ओके तो हम ईआरडब्ल्यू का प्रोडक्शन जीपी पे डाइवर्ट कर रहे हैं
यस एसेंशियली
Understood. ठीक है सर ओके एंड सर फुल ईयर के लिए यू आर थिंकिंग नाउ कंसोलिडेटेड एपिटा वी विल डू 7,000 रुपीज एपिटा पर टन
ऑन अ ईयरली बेसिस दैट इज व्हाट द नंबर वी आर टारगेटिंग करेंटली यस
ओके एंड सर लास्ट क्लैरिफिकेशन की एसएस का जो कैपेसिटी आ रहा है वो कब आएगा नेक्स्ट ईयर
सो वी हैव इंटीमेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज बाय Q4 27 we are hoping that it will become but we have as a management we are trying to achieve before that so internal target is way before that but the end timeline which we have intimated is Q4 27
and up to SSC capacity tak aur koi brownfield expansion bhi nahi hai apna
hello Ms. Alisha may we request you to repeat the question queue again
sorry can you repeat the question Alisha ma'am
हेलो सर जस्ट वॉन्टेड टू चेक की टिल द स्टेनलेस स्टील कैपेसिटी कम्स इन Q4 और कोई ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं क्या हम
करेंटली अंडर प्लानिंग बट करेंटली वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू डिस्क्लोज इट बिकॉज द फाइनल प्लानिंग इज नॉट बींग फाइनलाइज येट सो वी विल बी मे बी गिविंग यू इनसाइट अबाउट दैट इन द नेक्स्ट कॉल
ओके सर थैंक यू
यस मैम
थैंk you The next question is from the line of Deepak Pandey from Sagun Capital. Please proceed.
Hi sir, thanks for the opportunity. Sir, my question is on the inventory side. Was there any inventory loss this quarter? And if you can quantify how much was it?
No inventory loss in this quarter, last quarter.
Okay, and... Actually, that doesn't resonate with the, you know, EBITDA per ton fall from Q1 to Q2. So, if you can give me some reasons as to why the fall was there.
Actually, the rain is the reason because the rainy season we have the moisturized iron ore and coal. So, that 3-4% is moisture content in the both our raw material. So, that the if margins are low. And the production is also low down the iron ore and the coal. तो प्राइस जो उसका करेक्शन होना चाहिए था जो जो वो नहीं हो पाया, जो भी आप देखेंगे कि कोल का प्राइस करेक्शन भी हुआ है और आयरन ओर में भी प्राइस करेक्शन हुआ है अक्टूबर में, लेकिन ये रेनी सीजन में प्रोडक्शन कम हो जाने से माइंस के प्रोडक्ट के प्राइस कम नहीं हो पाते, दैट्स व्हाई द मार्जिन्स आर लो एंड EBITDA इज लिटिल लोअर फ्रॉम द Q1।
ओके गॉट इट। एंड ये सर साइकिल कैसे चलता है, बिकॉज लास्ट क्वार्टर द आयरन प्राइसेस वर डाउन 3 रुपीज पर केजी और सो एट व्हाट नंबर डू यू नो सी इन्वेंटरी लॉसेस?
सो इफ यू सी our major inventory is raw material, that is coal, pellets and iron ore. Our intermediate products, which is billet, coil and pipes, are actually we maintain in a very tight or very minimum quantity, and most of the intermediate products are consumed very consecutively in the next processes. So the inventory loss we are talking about is basically of finished product, which is next to negligible amount, because our raw material itself, the price has been corrected in post-September for the iron ore, for pellets and for the coal. So the effect of the loss of inventory of which you are talking about is not there in our balance sheet currently.
Got it. And sir, assessment of capacity, Amari, 1 lakh.
Hello?
Maybe last question, please, if you can allow.
Yeah, sorry, can you come again?
Sir, this capacity rate is going to go to 178,000 tons in FY28. So, usme split kya rahega sir, 200 cities and
200 cities? Sir, abhi koi split working hua nahi hai. So, agar aap dekhenge, to humne technical team aur kuch sales ke logon ko hire kiya hai to connect with the larger market which we are currently not serving. Our internal thinking is 60-40 ratio for 200 series and 300 series will give us optimum return in terms of EBITDA number and market acceptability. But actual number we can just tell you once the production starts and how the market behave in terms of our end product acceptance.
We are actually 178,000 is a CR coil enhancement, and we are also enhanced the saleable quality of the stainless steel HR coils also of 240,000 ton additionally. So we are making stainless steel HR coil 360,000 ton, out of which 120,000 ton of CR we are making.
Got it, sir. I'll join that with you. Thanks.
Thank you.
Thank you. Ladies and gentlemen, in order to ensure that the management is able to answer questions from all participants in the conference, please limit your questions to 2 per participant. The next question is from the line of Shivam Singh, an investor. Please proceed.
Namaste, sir. Sir, हम लोग का CR rolling mill का hot roll का दोनों का capacity utilization इतना कम है, तो हम लोग बाहर से coil क्यों procure कर रहे हैं?
साइज रेंज हमारी जो पाइप्स में हमको चाहिए, तो हमारी जो विड्थ है वो 470 mm तक की हम विड्थ का कॉइल बना पाते हैं। उसके एडिशनल पे जैसे हमें जो साइजेस बनाने होते हैं जो हमारी साइज रेंज पूरी करने के लिए, उसके लिए हमें एचआर कॉइल प्रिक्योर करना पड़ता है। बट हमारा केसदा का प्रोजेक्ट आने के बाद वो कुछ हमारी कॉइल्स इन हाउस भी बन जाएगी, तो हमें उसको हो सकता है कम प्रिक्योर करना पड़े।
अच्छा सर, एंड सर सेकेंड चीज था कि APL अपोलो जैसे कंपनीज जो है वो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड नहीं है, फिर भी उनका मार्जिन इतना रहता है, हम लोग का बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बाद भी मार्जिन क्यों नहीं एक्सपेंड कर रहा है?
सर, वी आर डूइंग अवर बेस्ट।
सर, वो भी तो टिल्डा में ही है सिचुएटेड, तो ऐसा तो है नहीं कि वो आपसे सस्ता कहीं से प्रोक्योर कर लेंगे, आप तो खुद बना रहे हैं, तो आपका मार्जिन तो उनसे ज्यादा होना चाहिए।
ज्यादा तो है अगर आप देखेंगे तो परसेंट वाइज और एक्चुअल पर टन वाइज भी, बट उनके पास भी जो प्रोडक्ट रेंज है काफी है, वो रूफिंग शीट्स में भी काम कर रहे हैं, वो जो बड़े पाइप्स हैं 1000 mm का पाइप उन्होंने बनाया, तो वो उनके मार्जिन बड़े सेक्शन के पाइप से भी ज्यादा आ जाते हैं। तो अब वो पुराने भी हैं, लाइक 20-30 years से वो पाइप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, आज मार्केट में उनका ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम है, तो धीरे धीरे हम भी उनके पीछे पीछे लगे हैं, पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं।
थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ करिश्मा, एन इन्वेस्टर, प्लीज प्रोसीड।
हेलो, I just have one question. I wanted to know what is the revenue guidance that you are giving down the line for 2 years.
Once our additional capex, which we have intimated, come into existence in FY28, we believe our revenue will be around 4,500 crore rupees, and the margin will be in the range of 10% to 13%, depend on the market condition.
Okay, thank you. That's it from my side.
Thank you. The next question is from the line of Hardik Gandhi from HPMG Shares and Securities Limited. Please proceed.
Hello, sir. Thank you for the opportunity again. So, just wanted to know one thing, that given that you expect your raw material prices to go down, so do you expect the top line as well as the margins to contract, not in the terms of percentage, but as a realization per ton?
Yes, definitely. So, I will just be precise. In the MS segment, we believe the current price is actually the landed cost of China, and our Indian price is higher currently. So maybe this price will persist for near the foreseeable period of time. So from here going down, in terms of MS coil price, looks very difficult, since the import price and our price is at equilibrium level. So had it been going down, or in future it's going down, will also go down, yes.
Understood. So, and when will we start manufacturing export grade? Any idea on improving our export numbers?
Currently, in MS and SS segment, we do not have any target for export. But in GP, it is an exportable product, and we are exploring Middle East market. We would happy to export the product as and when we will get the query or the sales requirement from Middle East market.
Understood, sir. Thank you. All the best.
Thank you.
Thank you. The next question is from the line of Pushpinder Jindal, an investor. Please proceed.
Hi, sir. Thanks for the opportunity, and congratulations for the good numbers. I was just trying to model the capacity. I'm not sure if this question was asked earlier. So FY26, the value-added product will have an installed capacity of 3.5 million ton for ERW pipe, 1 lakh, so 3.5 lakhs for ERW pipe, 1 lakh for GI and GP, and SS clay will have about 58,000. Is it right, sir?
Yes, sir.
And for FY27, so the ERW will be approximately 6.5 and 1.5 for GI and GP. Or is it because FY27 quarter 4 mein aa raha hai, so what will be the capacity installed for FY27? Is it going to be total capacity going to be 2 million or is it less?
Sir, hum logo ka jo 1.2 million ton ka product capacity hai, wo phases mein aayega. Abhi hum log only first phase implement kar rahe hain, with 360,000 ton of stainless steel coil manufacturing capacity. So, agar main usko add karunga existing capacity ke saath, so our capacity will look like this: 350,000 ton of MS pipe, that is ERW pipe, 1 lakh ton of GP coil and pipe, 58,000 plus 120, that is 1,78,000 of cold roll annealed pickle, bright annealed coil of stainless steel, and 2,40,000 ton of HRAP stainless steel coil.
Yeah, FY26 ke number then.
That will be for the FY27 year end. Okay. The last quarter capacity will look like this.
Okay. And sir, the iska jo feeder hai, I am seeing that the feeder capacity for that is like 16,98,000 is the current capacity that we have, the MS billets, the sponge iron and others. So that 1.7 million, so that is it going to increase and keep up the pace, or you will have to evaluate it vertically and you have to procure from outside? Because the integrated nature of the business,
yes,
the edge lies in the sponge iron and MS billets and these kind of plants, right? The feeder plants.
Sir, agar aap dekhenge, the first phase itself is 360,000 ton of stainless steel coil, which is fully backward integrated. So we will have from making the billet to making HR coil to our HRAP to CR coil, it will be all synced. सो हमारा जो 1.7 मिलियन का आपने बताया वो एमएस और एसएस और जीपी का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का प्रोडक्शन का कैपेसिटी ईच स्टेज का मिला के हुआ है। अगर एसएस का भी हम 360 का ऐड करेंगे तो उसका भी पीछे का जो बैकवर्ड का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा वो भी अगर ऐड करेंगे तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली एडिशनल 1.1 मिलियन ओवर एंड अबव 1.7 मिलियन दैट एग्जिस्टिंग वी हैव इन आवर प्लान दैट वी हैव शोन टू यू और वी आर ऑल पिक्चरिंग।
Then last question, sir. Last con call mein when we had this, so we had given a guidance about 8,000 EBITDA per ton for the whole year. Now I think it's getting revised to 7,000 EBITDA per ton blended for the year. Forever 26.
Sir, our target itself currently is we are hoping that we will be near 8,000, but for on a conservative basis, we believe 7,000 is what is very much achievable looking at the current set of for MS coil market.
Okay, thank you. All the very best.
Yes.
Thank you. The next question is from the line of Sanket Gupta, an investor. Please proceed.
Oh, thank you for the opportunity. I want to understand that what is the capacity utilization for FY26 and matlab is saal ke end tak hum log kitna capacity utilization kar lenge?
In the MS section mein approximately 60 to 70% and stainless steel and galvanized mein above 90%.
And sir, ये Q4 FY27 में जो stainless steel का capex live होगा, तो मतलब how much time it will take to reach a utilization level of 80-85% kind of thing means कैसे work करता है customer के साथ approval and all?
जी sir, so अगर हम अभी हमारा जो 58,000 ton का CR का stainless steel coil का हमारा capacity है, हमने देखा 6 महीने में ये approximately 80,000 का 80% capacity utilization हमने अचीव कर लिया है। हम नेक्स्ट जो FY27 Q4 में आएगा उसका भी हम बिलीव करते हैं कि 6 महीने में हम वो 80% 70 प्लस एटलीस्ट वी विल बी डेफिनेटली अचीविंग विद इन आफ्टर कमीशनिंग। उसके लिए जो सेल्स का टीम या जो मार्केट में जाके जो मार्केट रिसर्च करना या कनेक्ट टू द इंडस्ट्री पीपुल वो हमने ऑलरेडी प्रोसेस चालू कर दिया है। हमारे पास अभी भी 15 महीने का समय है जिससे कि हम मार्केट में कनेक्ट होके हमारा प्रोडक्ट पिच करके एक मार्केट को तैयार कर लेंगे। कमीशनिंग के 6 से 9 महीने में हम 70% डेफिनेटली वी विल बी अचीविंग द यूटिलाइजेशन एंड दैट इज हाउ द मतलब ट्रेडिशनली हमने देखा है कि स्टेनलेस स्टील का मार्केट रैंप अप होते हुए और प्रोडक्शन रैंप अप होते हुए।
आप लोग को हमेशा कंजर्वेटिव गाइडेंस देना चाहिए क्योंकि मार्केट विल रिएक्ट इफ गाइडेंस मिसेस एंड दैट, सो आई थिंक ऑलवेज कंजर्वेटिव गाइडेंस इट विल वर्क फॉर दिस आवर कंपनी। थैंक यू सो मच।
यस सर, थैंक यू।
थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ मिराज फ्रॉम सीजे शाह, प्लीज प्रोसीड।
या थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी सर, जस्ट एक क्लैरिफिकेशन था कि जो करंट कैपेसिटी है एमएस में 350,000 ही रहेगा, जीपी में 116,000 टन रहेगा और एसएस में जो है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 58,000 प्लस वी वर अर्लियर कॉल्स में वी हैड मेंशन दैट अनदर 58,000 वी विल बी अनलॉकिंग एज वेल।
सर वो मैं आपको नेक्स्ट कॉल में उसका पूरा क्लैरिटी दे दूंगा, उसका अप्रूवल अभी तक हमारे पास आया नहीं है। सीटीई कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट का अप्रूवल आ चुका है, उस बेसिस पे मैं आपको नेक्स्ट कॉल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन स्केड्यूल का क्लैरिटी दे दूंगा सर।
अंडरस्टूड। एंड सर जो 25 मेगावाट का हम लोग कैपेसिटी डाल रहे हैं फॉर कैप्टिव पावर, उसमें से सर सेविंग्स कितना आएगा
पर मेगावाट? अप्रोक्सीमेटली थंब रूल वाइज 2 करोड़ रुपीज पर मेगावाट पर ईयर।
सॉरी हाउ मच कैन यू कम अगेन?
Rupees per megawatt per year is the saving that we are contemplating.
Okay, 2 rupees per megawatt per year. Okay. And sir, any particular reason हमारा employee cost quarter on quarter इतना ज़्यादा increase हो गया है?
So in Q2 the employee cost has been a little bit increased. Due to we have employed some sales team member and some marketing and technical member for stainless steel section. As we are increasing our capacity in the case the plant, so we are developing the people for the for a good market reach. And one more additional reason, there is the one-time bonus which has been paid in September 25. This is a one-time cost of around 1.5 crore.
Understood. 1.5 crore total, one-time cost bonus. Okay, got it. Thank you. Thank you so much.
Thank you.
The next question is from the line of Deepak Pandey from Sagun Capital. Please proceed.
Sir, a few small questions. Firstly, on the EBITDA per difference between EBITDA per ton difference between 200 and 300, and then revenue split between SS and carbon steel, say once this capacity goes live in FY28.
So if you see for 200 series and 300 series, the margin in terms of percentage is almost nearby. Let's say for 300 series, we are just making 16,000, not more than that. And for SS, 200 series, we are making 14 to 15,000 rupees EBITDA per ton. Since we have to cater to the wider market, we have to make 300 series of product so that, you know, the same buyer who purchased 200 series will also purchase 300 series from us.
And sir, on the revenue split part between SS and carbon steel, once this capacity goes right?
For KZAP project capacity you are talking about?
On a company level, what would be the revenue split, say in FY28?
Approximately 60% to 65% will be from the stainless steel division, and from GP and ERW pipe division, it will be 35 to 40%.
And so the SS coil, we are selling in the spot markets only, or contract are also there?
Currently, our quantity is very less. That is, you know, capacity, installed capacity of around 5,000 ton per annum. So we don't require, or we are not selling in a contract basis. But going forward, since we will be selling HRAP, we may enter into MOU with certain large cold rolling mills, and we will be selling in a contractual basis. And contract will be for the quantity, it will not be for the price.
Right. That's it from my side. Congrats on the future. Thank you.
Thank you. That was the last question for the day. I would now like to hand the conference over to the management for the closing comments. Over to you, sir.
Thank you, everyone, for participation in this call. We trust that we have addressed your queries during this session. However, if there is any remaining questions, please feel free to reach out of our investor relations team at Go India Advisors. Once again, we extended our gratitude to all the participants for joining us today. Thank you and have a great day.
Thank you. On behalf of Go India Advisors, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your line.